आज शुरू करते हैं आयत नंबर 94 से तफसीर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकद जिअतुमूना फुरादा, और अलबत्ता तहकीक आ गए तुम हमारे पास फुरादा, अकेले अकेले। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसे पैदा किया हमने तुमको पहली बार, पहली मर्तबा। पीछे आपको जो आयत समझाई गई थी वो ये थी कि वो लोग जो कि अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बोहतान बांधते हैं कि उनके ऊपर भी कोई आयतें नाजिल हो रही हैं, या ये वो भी ऐसा बना के ला सकते हैं जैसा अल्लाह ने उतारा है कुरान, तो जब ऐसे जालिम गमरातुल मौत में होंगे, सकरातुल मौत में होंगे, तो उनकी क्या कैफियत होगी, कैसे फरिश्ते उनको मार रहे होंगे, कैसा उनका बुरा हाल होगा। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया कि अल्लाह के पास तो सबको अकेले अकेले ही आना है, ये हकीकत सबके लिए, उनके लिए भी है और बाकी जितने भी पढ़ने वाले हैं वो समझ लें इस बात को कि अल्लाह ताला के पास सबको वैसे ही अकेले पहुंचना है जैसे पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था। तो इसमें मुफस्सरीन कहते हैं कि एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है कि यहां पे कहा कि अव्वला मर्रतिन, पहली मर्तबा, जैसे पहले नहीं कहा गया, पहली मर्तबा, इसका मतलब दूसरी मर्तबा भी कोई होगी। तो पहले ही मर्तबा पैदा किया था, दूसरी मर्तबा पैदा करेगा कयामत के दिन। तो अल्लाह ताला ने वो हकीकत बता दी जिसको इंसान अक्सर अपनी जिंदगी में भूला रहता है कि मुझे अल्लाह ताला के सामने पेश होना है और अकेले ही पेश होना है, और ऐसे ही पेश होना है जैसे कि पहली दफा उसने मुझे पैदा किया था। और पहली दफा कैसे पैदा किया था कि दुनिया में इंसान आता है तो जो मर्द होते हैं बेखतना होते हैं, लड़के पत्ने के बगैर होते हैं, इसी तरह बिल्कुल बरहना, कोई कपड़े नहीं लेकर आए साथ, कोई जायदादें नहीं लेकर आए साथ, कोई डिग्रियां नहीं लेकर आए साथ, कुछ भी नहीं, खाली हाथ बिल्कुल चले आ रहे, ऐसा ही है ना, नंगे, खाली बदन, खाली हाथ और बेखतना। बिल्कुल इसी तरह हशर के मैदान में खड़े होंगे तो नंगे होंगे, बगैर खतने के होंगे और खाली हाथ होंगे, कुछ भी दुनिया की चीजों में से साथ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने वो दिन याद दिलाया कि उस दिन को याद करो जब तुम्हें अकेले अकेले पहुंचना है मेरे पास, जैसे पहली दफा तुम दुनिया में आए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे। और ये बात इंसान भूले रहता है सारी जिंदगी, ताकि जानने का वक्त आ जाता है। जानते हम सब हैं ये बात, कोई ऐसा नहीं है कि जो कहे, आप इतने मुर्दे दफनाए, कभी देखा हो किसी ने कोई मुर्दे अपने साथ कोई ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, कोई घरों के कागजात लेके जा रहे हैं, कोई चीजें लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो फरमाया तरख तुम मा खबरना कुम वराजरूरी कुम, छोड़ आए तुम जो दिया हमने तुमको अपनी पीठों के पीछे। मैंने आपको बताया ना, खबल उस चीज को भी कहते हैं, वो कीमती चीज जिस पे हिफाजत की जाए, जिसकी निगरानी की जाए। और वो क्या चीजें हैं कुछ सोचे, जिनकी हम बड़ी निगरानी करते हैं, बड़ी हिफाजत करते हैं, हमारे जेवरात, हमारी तिजोरियां, हमारे लॉक, जिनको हम तालों में बंद कर करके रखते हैं। बाद लोग तो आम चीजों को भी, खाने पीने की चीजों को भी ताला ही लगा के रखते हैं, तो बड़ी संभाल की चीजों को रखते हैं, नहीं कोई खा ना ले, अपने कपड़ों को ताले लगा के रखते हैं, अपनी चीजों को ताले लगा, वो कीमती चीजें समझते हैं ना हम, जिनको हम ताले लगाते हैं, तो वो खब्बल है जिसकी बड़ी हिफाजत की जाए। वो जिनकी बड़ी हिफाजत करते थे उनको लाए नहीं साथ, उनके ऊपर तो पहरे बिठाते थे ना, कोई ले ना ले, बंद कर करके रखते थे, तो वो कहां गई चीजें जिनकी इंसान इतनी फिक्र करता है कि ये मुझसे चली ना जाए, ये कोई ले ना जाए, ये कोई चोरी ना हो जाए, आज सब छोड़ आए। देखिए इंसान कितनी सारी चीजों के लिए इस तरह से सोचता है कि मैं ही हूं, मैं अपने पोजेशन में रखूंगी, मैं किसी को दूंगी नहीं, मेरी चीज है, मेरे खजाने मैं इनकी मालिक, कोई और ना ले ले। और वो देखो कैसे छोड़ के चला जाता है उन्हीं चीजों को जिनके ऊपर उसका इतना दिल लगा होता है, जिनके साथ उसकी फिक्रें लगी होती हैं कि मुझसे छूट ना जाए, कैसे वो हाथ से निकल जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आ गए ना तुम हमारे पास अकेले ही, कहाँ रह गई वो चीजें। एक अव्वल रैपिंग को भी कहते हैं, रैप यानी कवर, जिन कवर्स में तुम थे यानी जिन नेमतों में तुम रैप थे, जिन चीजों जो इतनी अल्लाह ताला ने तुम्हें जो भी आसाइशें जो भी नेमतें जो कुछ भी दिया हुआ था उन नेमतों के अंदर आप कवर्ड होते हैं, वो सब भी छोड़ा है। वो बैंक बैलेंस कहाँ गए, वो प्लाटों के पेपर्स कहाँ गए, वो जमीनें कहाँ गई, वो डिग्रियां कहाँ गई। यही है ना चीजें, इंसान इस जिंदगी के अंदर सोचता है ये कभी मुझसे दूर नहीं होंगी, ये मेरे पास ही रहेंगी। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नहल में, मा इंदकुम यंफिदु वमा इंदल्लाहि बाक, जो तुम्हारे पास है ना उसमें तो खत्म ही हो जाना, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला, सब कुछ ही पीछे रह जाना। क्यों चिमटा चिमटा के रखते हैं इन चीजों को, क्यों इन्हीं के साथ अपना सारा वक्त लगा रहे हैं जिनको छोड़ जाना है। इनको सजाने की मसरूफियत, इनको रखने की मसरूफियत, वो कारोबार जिनके लिए जिंदगियां लगाई, वो डिग्रियां जिनके लिए जवानियां गुला दी, वो पैसा जिसके लिए ना हराम देखा ना हलाल देखा। देखिए कई चीजें जरूरत हैं, बेशक वो जरूरत है, काम कारोबार भी जरूरत है, घर भी जरूरत है, सब चीजें ये जरूरियात ये जिंदगी है, कोई हरज नहीं है कि अगर इंसान इनके अंदर वक्त लगाए, मगर अपनी सारी जिंदगी इसी के पीछे लगा दे, उसको याद ही ना आए कि ये मैंने छोड़ जाना है। जिस चीज को छोड़ जाना होता है ना इंसान का, फिर बहुत ज्यादा उसमें दिल नहीं लगता। जिस चीज को भी आपने छोड़ जाना, आपको फिर दिल उठना शुरू जाता है उससे, अच्छा ये तो फिर रह ही जानी, अच्छा ये फिर छोड़ ही जानी। आप मसलन किसी होटल में, आप उसकी चीजों को तो नहीं संभाल संभाल के रखते रहते, तो आपको पता है होटल का कमरा है, थोड़ी देर में मैंने चले जाऊं, खुद ही पीछे वाले संभालते रहेंगे, मुझे क्या इतनी जरूरत। कोई फिक्र करता है उन चीजों की, कोई सीने से लगा लगा के रखता है। फिर आप देखें दुनिया में जो महफिलें हैं जिनमें बैठ के हम गप्पे मारते हैं, कह के लगाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन उस दिन वो महफिलें भी सारी दुनिया में ही रह गई। ये भी रैप्ड है ना, जिसमें हम रैप्ड हैं। मुझे एक स्टूडेंट याद आई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो बीमार थी, बहुत बड़ी डॉक्टर थी, तो मुझे कहती कि सुभान अल्लाह उनकी बातें उस वक्त इतनी विजडम की हो गई थी ना, कहती हैं कि मैं महफिलों की जान होती थी, अगर मैं नहीं आती थी ना तो लोग कहते थे वो कहाँ है, नाम ले लेके पूछते थे कि इसके बगैर मजा नहीं आता, इतना वो फन थी अपनी मजलिसों में। आज उनके बगैर मजलिसें चल रही हैं, कोई शायद उनका नाम भी ना लेता। तो देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला वो बात समझा रहा है जो इंसान को बड़ी देर बाद समझ आती है। वो कहते हैं ना जिंदगी की समझ उस वक्त आई जब जिंदगी खत्म हो गई। तो हमें भी अक्सर जब जिंदगी चल रही होती है ना, इतनी हसल बसल है, इतनी मसरूफियत है, समझ नहीं आती, जब खत्म होने लगती है ना तब समझ आती है, पीछे मुड़ के देखती क्या रह गया मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं, मैंने किधर जवानी गुला दी, मैंने किधर अपना वक्त लगा दिया, ये इन ठीकरियों के पीछे, इसके पीछे वो कीमती दिन गंवा दिए। अल्लाह अकबर। तो उस दिन उस भीड़ में कितनी दुनिया होगी सोचे, इमेजिन करें आप हज पे देखते हैं कितने लोग होते हैं, इतना हजूम होता है, इमेजिन करें कि हशर के मैदान में कितना रश होगा, उस रश में भी हर कोई अकेला होगा फुरादा, और अल्लाह ताला के सामने भी अकेले ही पेश होना होगा, नाम लिया जाएगा फलां बिनते फलां आ जाए आपकी बारी है। और फिर सोचे अभी सुन के भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या वक्त होगा कि मेरा नाम लिया जाएगा, कि मैंने किसके सामने पेश होना, किसी इमिग्रेशन वाले के सामने नहीं, किसी दुनिया की अदालत में नहीं, किसी जज के सामने, किसी वकील के सामने, किसी और किसी पेशी में नहीं पेश होना, अल्लाह की अदालत में पेश होना। अल्लाह अकबर। और अब मेरे लिए क्या फैसला होगा मुझे नहीं पता, क्या कहा जाएगा मेरे लिए। एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम है, और आगे मेरे अमल है। अब जो अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद इससे हायर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जहां पे अपील कर दी जाए, इससे ऊपर कोई जगह नहीं है जहां पे मैं जाके रहम की दरखास्त डाल सकूं। ये हाईएस्ट अदालत है और इसका फैसला माना जाता है। यूं ही फैसला दिया जाएगा, फरिश्ते तैयार खड़े होंगे। जन्नत का फैसला है तो जन्नत के लिए, और जहन्नम का फैसला तो उसके लिए। फिर ये कितनी बड़ी फिक्र है लगाने की ना, कितनी बड़ा ये एक इंसान के लिए एक सोच का मकाम होना चाहिए कि मैं किस तरफ को जा रही हूं, और मुझे चलना किधर है, मेरी मंजिल कहाँ है, और मैं दौड़ किधर रही हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं कर क्या रही हूं। ये फिकरात ही खत्म हो गई हमारे। ये तो कुरान हमें झंझोड़ देता है, जगा देता है, वरना हम तो लगे हुए अपनी धुन में, होश आता ही नहीं। वो जिस वक्त हमारे हाथ पैर बिल्कुल ही इस काबिल नहीं रहेंगे, इतने वीक हो जाएंगे, बस बैठे ही रहेंगे, जाहिर है फिर अगर इतनी जिंदगी रही तो तब फिर जाके याद आएगा कि अच्छा अब कुछ करने के तो काबिल नहीं रहे, तो अब सोच आएगी कि क्या किया। जब तक जिस्म चल रहा है, जवानी है, हिम्मत है, सेहत है, भागे फिर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर की मसरूफियत, उधर की मसरूफियत, ये करना है, वो करना है, मेरे पास टाइम नहीं, सोचने का भी टाइम नहीं है, वाकई सोचने का टाइम नहीं। बैठते भी हैं तो वो ही फिक्रें, और यहां पर थक के सो जाते हैं, फिर उठ के फिर वही चीजें शुरू कर देते हैं। तो वो कैसा दिन होगा, अल्लाह के सामने अकेले ही पेश होना होगा। कहाँ गए वो दोस्त, अहबाब, बच्चे, घर वाले, हमसाए, कहाँ गए वो सब हमदर्द, वो किधर है? कोई कहीं किसी की नजरों में कोई आशनाई नजर नहीं आएगी, कोई किसी के अंदर कोई अपनायत, कोई हमदर्दी, कोई वेलकमिंग चीज ये नजर नहीं आएगी। सब दिल का हाल क्या होगा, गम से पटा जा रहा होगा। कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, क्यों ना आए। हर इंसान का हाल ये होगा कि बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा, इतना शदीद काम होगा। तो ये पहला मंजर जो यहां पे बताया गया ना कि अकेले तुम्हें आना है हमारे पास, इसको भूलना नहीं, इतनी परेशान कुन बात है ना कि वो जो इतनी दुनिया खड़ी हुई है उसमें भी मैं अकेला, सिर्फ तन्हाई जो है ना इंसान के लिए वो बड़ा आजाद है। इंसान कहीं किसी भी मुश्किल में अपने आप को लोनली फील करे ना, कहते ना कि देखो हम किसी की मुश्किल तो नहीं आसान कर सकते, मगर किसी को दो बोल हमदर्दी के बोल देते हैं तो उसको तसल्ली हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, हम किसी बीमार के पास क्यों इयादत करने जाते हैं, कोई उसकी बीमारी थोड़ी हम दूर कर सकते, बस उसको जो तसल्ली के दो बोल बोल देते हैं उससे ही बेचारे का हौसला बढ़ जाता है। कोई और किसी परेशानी में हम उसके जाके जरा तसल्ली दे देते हैं, वो बेचारा थोड़ा हिम्मत करके खड़ा होने के काबिल हो जाता है। वो कैसा मंजर होगा जिसमें कोई ये कहने वाला नहीं है कि फिकर ना करो, यू विल बी ओके, ये कोई कहने वाला नहीं है। कहाँ गई चीजें, कहाँ गई है अलमारियां भरी हुई कपड़ों से, जूतों से, लॉकर जेवरात से भरे हुए, कहाँ गए बैंक बैलेंस, कहाँ गई डिग्रियां, कुछ भी साथ ना आया तो ये फिर क्या है दुनिया, जीरो जीरो है। जिसने बहुत कुछ बना लिया वो भी जीरो, जिसने कुछ ना बनाया वो भी जीरो, वो तो था ही जीरो। इतने महल खड़े कर लिए उसके भी जीरो हो गए। लोग फखर करते हैं, हमने इतनी जमीन खरीद ली, इतने प्लॉट है मेरे पास, इतना मेरी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, मेरे पास स्टॉक मार्केट में इतने स्टॉक्स पड़े हैं, मेरा कारोबार इतना बड़ा है। इसके ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं मजलिसों, मेरी गाड़ी ऐसे, मेरा घर इतने हजार गज का, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद उतनी जमीन एक बादशाह को भी मिलनी है और उतनी ही एक फकीर को मिलनी है। कब्रिस्तान में आप देखेंगे बादशाहों की कब्रें को बहुत बड़ी नहीं है, फकीरों की कब्रें छोटी नहीं है, सबकी बराबर। हाँ, अंदर उनके क्या है वो उनके अमल पे है। बड़ी जायदादों वालों ने क्या सारी जायदादों में अपने लिए बड़ी कब्रें बना दी? नहीं, वो ही कब्रिस्तान सबको मिलता है, उनको तो अपनी जमीनों पे भी कब्र नहीं नसीब होती, वो जमीनें भी कोई और ले जाता है। अपने घरों में भी रहना नसीब नहीं होता क्योंकि घर में उनकी कब्र बना दी जाए जो महल जैसे घर खड़े किए। कितनी बड़ी हकीकत है ना, अगर याद नहीं रहती, याद नहीं रहते। बुखारी और बुखारी की हदीस है गालिबन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का रेफरेंस आप नहीं लिखे क्योंकि मुझे नहीं कंफर्म कि ये बुखारी में है या नहीं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया, वो फना हो गया, जो तूने पहन लिया वो पुराना हो गया, जाया हो गया, या तो तूने खैरात, जो तूने खैरात कर दिया वो बाकी रहा, इसके सिवा जो कुछ है उसको तू औरों के लिए छोड़ गया। हसन बसरी फरमाते हैं अल्लाह ताला कयामत के दिन इंसान को अपने सामने खड़ा करेगा और उसे पूछेगा जो तूने जमा किया था वो कहाँ है, वो जवाब देगा मैंने बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको दुनिया में छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ इब्ने आदम जो पीछे छोड़ा हुआ है वो तो यहां नहीं है, हाँ जो आगे भेजा था वो यहाँ है, अब जो वो देखेगा तो कुछ भी नहीं होगा उसके लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई। तो जो इंसान आगे भेजता है उसको वहां पा लेगा, जो फिर पीछे रह गया वो यहीं पे रह गया, वो वहां नहीं पहुंच सकता। तो फिर देख लें हम कि कौन सी चीजें हैं जो हम साथ ले जा सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जो यहाँ छोड़ने वाली, जो यहीं रह जाएंगी, कल हमारी वापसी अगर होनी हो तो हमारे पास क्या चीजें हैं? कुछ कीमती चीजें रख ली हैं? कुछ ऐसी चीज है जो आखिरत के बाजार में उसकी कोई कीमत लग सके? या सभी ठीकरियां ही जमा की जो यहीं छोड़ जानी? अल्लाह अकबर। फरमाया वमा नरा माकुम शुफाआकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरका, हम तो नहीं देख रहे तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारशियों को जिनको तुम गुमान करते थे कि वो भी तुम में शरीक है, यानी तुम्हारे वो पार्टनर। यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है बात के जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते थे, बल्कि वो जिनके साथ तुम कॉन्टेक्ट बना के रखते थे ना कि ये मुश्किल वक्त में मेरे काम आएंगे, वो सिफारशी कहाँ है जो तुम्हारे शरीक, जो तुमको तुमने समझा हुआ था कि ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, ये बड़े बड़े लोग हैं। देखिए हर एक ने ना अपने साथ कोई ना कोई बासर खानदान के कोई बड़े लोग या बड़े मिनिस्टर या बड़े दौलतमंद लोगों को अपने साथ मतलब एक सहारे के तौर पर रखा होता है कि ये अगर हमें कोई मुश्किल पड़ती है तो ये हैं जो जिनको मैं कॉल करूंगी या जिनके पास मैं चली जाऊंगी तो उस वक्त मुझे हेल्प करेंगे। तो उस दिन पूछा जाएगा वो नजर नहीं आ रहा है, वो किधर है, जिनको पर आपको बड़ा भरोसा होता है, बड़े आपको कॉन्फिडेंस होते हैं कि नहीं ये मेरे साथ होंगे उस वक्त, ये फलाने वक्त में मुझे कोई जॉब चली जाएगी या कोई ऐसी मुश्किल होगी या कोई पैसे चाहिए होंगे तो भाई इनके पास चली जाऊंगी, वो कहाँ है आज? لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، البتہ تحقیق کٹ گئے تمہارے درمیان سے، یعنی وہ رشتے وہ ناطے وہ بالکل سب ختم ہو گئے. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، اور گم ہو گئے تم سے جو تم گمان کیا کرتے تھے، جو تمہیں لگتا تھا نا کہ یہ میرے سہارے ہیں، یہ میں ان کو آگے کروں گی جس وقت مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوگا. وہ ہر تعلق، ہر کانٹیکٹ، ہر واقفیت سب کٹ گئی. یہ تو مرتے وقت ہی پتہ چل جانا ہے. آخرت کا دن، قیامت کا دن تو جب آنا ہے وہ تب ہے، لیکن جو مرتے وقت انسان کو یہ سمجھ آ جانی ہے یہ باتیں، اور بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی کہ وہ کدھر گئے سارے. کوئی پاس بھی کھڑا ہو تو کچھ نہیں کر سکتا. جن کے سہارے کے اوپر انسان من مانیاں کرتا ہے، یہ ہے جو میرے ساتھ، وہ کہاں گئے. اسی طرح بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو لوگوں نے یہ سمجھا رہا کہ وہاں جا کے وہ ہمیں چھڑا لیں، وہ کہاں گئے. کچھ چھڑانے والا نہیں وہاں پہ ہوگا. یہ نیک ہستیاں ہیں، مثلا مالدار نام بھی صحیح، مثلا کوئی نیک ہستیاں ہیں، کوئی اولیاء اللہ ہیں، جن کو اس لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جی ان کا ہم نے دامن پکڑ لیا، ہمیں پار انہوں نے ہی کرانا ہے اور یہی ہیں ہمارے، اور وہاں پہ بھی یہی ہمیں ہمارے کام آئیں گے. وہ سارے کٹ جائیں گے رشتے. جن کو انسان یہاں پہ راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے نا کہ وہاں پہ کام آ جائیں گے، وہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے. جہاں پہ نفسی نفسی پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی، وہاں پہ کس نے کسی کو دیکھنا. اللہ اکبر. ان اللہ فالق الحب والنوا. پھر اللہ تعالی جو یہ ساری باتیں بتا کے نا، پھر اللہ تعالی اپنی بعض قدرتوں کو بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات کا جو ایک سلسلہ چلا رہا ہے جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس وقت سے ایک چین ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے، جو ختم نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا. کیونکہ یہ ساری جو سورت ہے نا توحید کے گرد گھومتی. تو اللہ کو پہچانو، تمہیں تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جیسے اس کی قدر ہونی چاہیے تھی. یہ تم یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو، اور پھر فرما دیا اللہ تو وہ ہے فالق الحب والنوا، جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا. یہ کہ آپ نے کبھی اگر گارڈننگ کی ہو، آپ کسان کو دیکھیں، وہ دانا ایک ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی بس نہیں ہے کہ وہ اس دانے کو پھاڑ کے زمین سے نکالے. زمین اتنی سخت ہے، وہ کتنا سا دانا ہے بتائیں، کتنا چھوٹا دانا ہوتا ہے. یا کتنی کبھی کھجور کی گٹھلی آپ نے ڈالی ہو زمین، کتنی سی گٹھلی. اب اس یہ پھٹے وہ کتنی سخت ہوتی ہے، اس کے اندر سے کومپل نکلے اور زمین اتنی سخت اس میں سے نکل آئے، یہ صرف اللہ کرنے والا ہے کہ اس کو وہاں پھاڑتا ہے. کسی کا بس نہیں یہ، تم کر کے دکھا دو ایسا. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. مردہ انڈا ہے، اس سے زندہ مرغی نکلا. مردہ بیج ہے، اس سے دیکھو کیسے پودے نکلا. مردہ ہے نطفہ، نطفہ زندہ چیز تو نہیں ہے، اس سے کیسے انسان بنتا ہے. اور مخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکال دیتا ہے. مردہ کیسے زندہ سے نکلتا ہے کہ ایک مرغی ہے اس سے انڈا نکل رہا، مردہ چیز ہے، آدمی ہے اس سے نطفہ نکلتا ہے. اس طرح بے شمار اور چیزیں، پودے ان کے اوپر بیج لگتے، گٹھلیاں لگتی ہیں، گٹھلیاں مردہ ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، زندہ انسان ہوتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کیسے ایوری ڈے ایک سائیکل چل رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے. ایک بے جان چیز ہے، اس سے کیسے جاندار چیز نکل رہی ہے. ایک جاندار چیز ہے، اس سے تو جاندار ہی نکلنا چاہیے، اس سے بے جان چیز نکل رہی. یہ سب کس کے عمل ہے؟ تو سبحان اللہ، صرف اللہ ہی کی قدرت ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. فانا تفکون، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات कि इंसान अगर सोचे ना इन चीजों को, तो वो कभी मौजे मांगता है, ये कम मौजे, इंसान कहता है कोई निशानी अल्लाह की हो फिर मैं अल्लाह को पहचान, ये कम निशानियां जो रोज वो अपने सामने देखता है। कैसे माँ के पेट से एक नुतफा तो दाखिल हुआ था, मगर निकला क्या, एक जिंदा बच्चा। सुभान अल्लाह, उस नुतफे से एक जिंदा बच्चा कैसे बन गया ही? फिर उलमा ने इसका ये भी कहा कि जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से, कि नेक के घर बद और बद के घर नेक। बद जो है ना वो मुर्दा है, और नेक है वो जो जिंदा है, तो अल्लाह ऐसे भी पैदा करता है। अल्लाहु अकबर, फालिकुल इसबाह, फाड़ने वाला है सुबह का। सुबह को तुलू करना, फाड़ना किस लिए कहा गया? फालिक, फलक कहते हैं फाड़ फटना, सूरह फलक भी है, तो उसी से फालिक, फाड़ने वाला है। अगर आप कभी सनराइज देखें तो बिल्कुल घुप अंधेरे के अंदर ऐसे लगता है कि वाकई इस एक चीरा दिया गया है, एक कट हुआ है और वो फटी है, एक लाइन ऊपर जाती है रोशनी की, तो जैसे किसी ने अंधेरे की चादर को फाड़ दिया। आप मुझे इतना बताएं, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली, इतनी सब इंसान अपने आप को पता नहीं क्या बड़ी चीज समझने लगा, जी मैं क्या हूं, और बाज इतने बेवकूफ है, वो कहते हैं वो चीज जो साइंस नहीं प्रूव करेगी हमने मानना ही नहीं, हमने मानना ही नहीं है। बेचारी साइंस तो खुद लूली लंगड़ी, जिसका आज आप हाल देख ही रहे हैं कि क्या है दुनिया के अंदर। तो जितनी भी इंसान ने तरक्की कर ली हो, चांद तक भी पहुंच जाए, वो उसको कह दें कि अगर अल्लाह ना सूरज निकाले, दिन ना निकाले, इंसान निकाल के दिखा दे। चलो इंसान ने एक एक्सपेरिमेंट कर ले, रात के 12 बजे जरा दिन निकाल के दिखा देना, नहीं निकाल सकते, बेबस है, बेबस है। वो तो एक छोटे से अल्लाह ताला की एक भेजे हुए वायरस के सामने बेबस हो गए, जिसको आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, उसके सामने बेबस है तो और बड़ी चीजें तो क्या है। सूरज को निकाल के दिखाए, अब पता चल गया ना सूरज के बारे में बड़ी तहकीक हो गई क्या है, तो निकाल के दिखा दो ना जरा। जमीन को जल्दी रोटेट कर दो, आपको तो पता है दिन और रात जमीन की रोटेशन से होते हैं, रोटेट कर लो जमीन को, तेज कर लो, जल्दी निकाल के दिखा दो, स्लो करके दिखा दो, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे निजाम चल रहा है, इंसान मजबूर है कि उसी को माने, तो फिर उस रब को क्यों नहीं मानता कि जो उसके पीछे है। हम मजबूर है ना, हमारे जिस तरह के दिन और रात है हम इसको बदल नहीं सकते, इससे पता नहीं चलता कि हम किस कदर कमजोर हैं। कोई हुकूमतें आए, कोई बादशाह आए, उनका दिल करे कि भाई ये फलां दिन जरा हम जल्दी ले आए, हमारा फलां जश्न का दिन है, फलां खुशी का दिन है, या ये दिन जल्दी गुजर जाए, ये मुसीबत के दिन है, इनको जरा तेजी से गुजार ले, कोई कर सकता है? फिर पहचानते क्यों नहीं इससे अल्लाह को? वजाल सकना, और उसने बनाया रात को बाईसे सकून। सुबहान अल्लाह, रात भी अंधेरे को, रात को बुरा ना समझो, रात बुरी नहीं, ये तो अल्लाह ताला की ये भी एक निशानियों में से निशानी है कि उसने रात का एक पर्दा डाल दिया, अंधेरा कर दिया, किस लिए? ताकि तुम सुकून हासिल कर सको। सुकून कैसे इंसान हासिल करता है? इसके अंदर सो के, जब वो सो जाता है, कहते हैं ना जिनको अल्लाह माफ करे डिप्रेशन की या ये बीमारियां हो जाती हैं, तो फिर उनको नींद की गोलियां दी रखते हैं, बस सोए रहे, ये सोएंगे तो इनको दिमाग को सुकून मिलेगा। तो जो नींद है ना, वो सुकून की चीज है इंसान के लिए, उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स कर जाती है, उसके अंदर कितनी तरह की जो रिपेयर्स होती हैं वो होती हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टर से बात हुई, तो उसने जो एक बात कही मुझे बड़ी से हैरत, तो इसने कहा कि देखें जो आप रात को नींद लेते हैं ना, वो मुझे बताएं कि आप कितनी रात को नींद लेते हैं, क्योंकि जो दिन की नींद है वो काउंट नहीं होती उस तरह से जैसे रात की नींद है। रात की नींद इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो आपकी बॉडी अपने जो पूरा निजाम है अपना रिपेयर का, मेंटेनेंस का, जो वो करती है ना, वो दिन में नहीं होता। रात की नींद कितनी ज्यादा जरूरी है, तो अल्लाह ताला फरमाता है इसको अल्लाह ने सुकून की चीज बना दिया। सुभान अल्लाह, इंसान को सुला के उसकी सारी बॉडी जो है ना अपना काम दूसरा शुरू कर देती है इसको रिपेयर करने का। अल्लाह ताला उसके लिए लाइट्स ऑफ कर देता है। हम भी बच्चों के कमरे में उनको सुला के उनकी लाइट्स ऑफ कर देते हैं ना, खोले ही रखते, क्योंकि दिन अपनी तरह से एक नेमत है, रात अपनी तरह की एक नेमत है। रात में जो अंधेरा हो जाता है उससे इंसान को नींद आने में सहूलत होती है, पूरी लाइटें जली हो, कभी भी दिन का सोना वैसा नहीं होता। इसीलिए जिन लोगों ने दिन में सोना होता है वो थिक पर्दे लगाते हैं, बिल्कुल अंधेरा करते हैं कमरे में, रात की तरह का समां बनाने की कोशिश करते हैं, तब नींद आती है। तो ये नेमत भी कि अल्लाह ताला रात की तारीकी कर देता है कि हर चीज, इवन चरिंद परिंदों की भी नहीं आवाज आती बाहर, वो भी अपने घरों को चले जाते, हर चीज अपना काम बंद करके अपने घर का रुख करती है। और इंसान को भी, जितना भी इंसान चाहे, अल्लाह ताला समझ ले एक फोर्स्ड तौर पे फोर्स कर देता है उसको कि काम छोड़ के बस आराम करो, बस तुम्हारा जितना काम कर लिया बस करो। और इंसान की बॉडी भी ढीली पड़ने लगती है, अंधेरा जैसे जैसे होने लगता है। और देखिए ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि रोजाना बगैर मांगे हमें मिल जाती है। आप मांगते हैं कि अल्लाह रात कर दे, अब मैंने सोना है, अब मेरी बॉडी को आराम चाहिए। बल्कि इंसान तो शायद अगर दिन ही दिन रहता तो पता नहीं कितने घंटे वो काम ही करता रहता, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे अब आराम की जरूरत है। हम इतने कामों में मशगूल होते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला आपको फोर्स कर देता है कि नहीं बस करते आप। कितनी उसकी रहमत है, और उसको पता है कि कितनी देर इंसान काम कर सकता है। अगर वो 24 घंटे काम करता रहेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अल्लाह ताला बस एक काम का टाइम रखा, उसके बाद आराम का, फिर काम का, फिर आराम का, उसको पता है। ऐसे नहीं होता कि 2 दिन के बाद रात आए, ऐसे भी तो हो सकता था। अब वो पता है दूसरे प्लैनेट्स और इनके ऊपर 24 आवर का ऐसे दिन नहीं होता, वहां पे दिन के जो आवर्स है ना वो डिफरेंट है। यानी मसलन वैसे एक मिसाल दे, जैसे कि 48 आवर्स के बाद रात आए, 60 आवर्स के बाद वहां पे रात आती है, उनका दिन इतना लंबा होता है, उनकी रात कितने घंटे की होती है। यहाँ हमारा इतना बैलेंस्ड अल्लाह ताला ने रखा है, क्या इससे पीछे पता नहीं चलता कि कोई है अलीम जात, कोई है खबीर जात, कोई है कुदरत वाली जात, जिसको सारा पता है मेरी क्या नीड्स हैं, उस मुताबिक उसने सारा सिस्टम बना दिया मेरे लिए। अगर इंसानों के लिए होता कि वो अपने आराम का, अपने सोने का वक्त एक रखे, वो अपनी अपनी रात खुद बना ले। आप अपनी रात पता नहीं शाम के 4 बजे बना लेती, कोई सुबह के 8 बजे बना लेता, कोई रात के 12 बजे करता रात। अब कितना निजाम सोचें डिस्टर्ब हो जाता, आपके कमरे के अंदर ही कोई हलचल होने लगे जब आप सोए हो तो नींद डिस्टर्ब हो जाती। और कहां कोई किसी वक्त रात कर रहा है, कोई किसी वक्त रात कर रहा है, कोई किसी वक्त कर रहा है, कितना मुश्किल होता। तो सुभान अल्लाह, अगर इतनी एक है, ये बातों के लिए आपके पास डिग्रियां होनी जरूरी नहीं है, ये बातें समझने के लिए आपको को बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, ये तो आम फहम बातें हैं, इससे भी नहीं तुम्हें समझ आती। और फिर देखो वशमसा वल कमर हुसबाना, और सूरज और चांद को हिसाब से बना दिया, एक हिसाब का जरिया भी बना दिया, हिसाब से भी बना दिया, दोनों माने हैं इसके। यानी सूरज और चांद जो चल रहे हैं ना, इतने हिसाब के साथ चल रहे हैं, इतने उनकी एक्यूरेट टाइम है। अगर आप बनाना चाहें ना तो आप जैसे नमाज के कैलेंडर होते हैं, आपने देखा वो कितने कितने आगे साल तक के बनाए होते हैं, वो कैसे बनाए होते हैं, इसलिए कि सूरज एक डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। अगर सूरज अपनी मर्जियां करता और वो जब मर्जी निकलता, जब मर्जी आता, किसी दिन तेजी से चला जाता गुजर के, किसी दिन बड़ी लेट आता, आज थका हुआ था, किसी दिन बहुत स्लो चल रहा है, आज दिल नहीं चाह रहा चलने का ही दिल नहीं चाह रहा, तो फिर क्या होता, हमारे कैलेंडर बन सकते। इनको अल्लाह ने एक हिसाब से रखा है, एक शुमार है। चांद है तो उसको भाई फुल मून ही उसको अच्छा लगता है कि मैं पूरा ही चमकता रहा, तो वो अब पूरा महीना पूरा ही चमकता रहता, तो आप कैसे हिसाब रखते। अल्लाह ताला ने इनको हिसाब से चलाया ताकि हमारे लिए हिसाब का जरिया बन जाए। आप देखें सूरज और चांद के जरिए हम अपने कैलेंडर्स बनाते हैं, हमें पता चलता है एक एक मिनट का, एक एक दिन का, एक एक हफ्ते का, एक एक महीने का, एक एक साल का, वरना कोई ना सालों की गिनती रहती, ना महीनों की, ना किसी चीज की, कोई गिनती नहीं रह सकती कि हमारे काम कैसे होते बताए। अल्लाह ताला अगर इनको इस निजाम में ना बांधता तो हम तो दिन का भी नहीं काम कर सकते थे, सारा दिन ही दोपहर रहती तो क्या करते, फिर उसके बाद रात ही ना होती और दिन ही ना आता, तो हमें कैसे पता चलता दिन एक दिन गुजरा है कि नहीं गुजरा, ना हफ्तों का पता चलता, ना महीनों का, ना सालों का, सारा सिस्टम दरहम बरहम हो जाता। वो नहीं जिन कैदियों को खाल कोठड़ियों में बंद कर देते हैं, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला नस्लों तक को भी महफूज रखे, तो वो बेचारे बाहर की रोशनी तो उनको आती नहीं, तो वो दीवारों के ऊपर ही लकीरें लगा लगा के कहते हैं कि ये इतने दिन गुजर गए हमारे। अल्लाह अकबर। तो ये जो निजाम अल्लाह ताला ने रखा है ना, ये हमारे हिसाब किताब के लिए रखा है। और इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि जो सोलर कैलेंडर भी है, यानी जो जो जनवरी फरवरी के जरिए आप हिसाब किताब रखते हैं या मुहर्रम सफर के जरिए रखते हैं, दोनों में कोई हर्ज ऐसा नहीं है। जरूरत के तहत आप सोलर कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं। और हमारी चूंकि सारी इबादात लूनर कैलेंडर के साथ है, कमरी माह साल के साथ है, इसलिए हमें वो भी जानना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कब हमारा नया साल शुरू हुआ, मुहर्रम कब है, कब जिलहज है, कब रमजान है, कब शव्वाल है, कब हुरमत वाले महीने हैं, कब क्या, ये पता होना चाहिए हमें, तो वो भी जरूरी है। और अगर हम हिसाब किताब कोई दुनियावी हिसाब किताब के लिए हम सोलर कैलेंडर यूज करते हैं, तो अल्लाह ने दोनों को हसबान के हसबाना बनाया है, तो कोई हर्ज नहीं है ऐसा। हम अपनी नमाजें भी तो सूरज के मुताबिक ही पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई सूरज हमारा दुश्मन है तो चांद है जो इस्लामी है और सूरज गैर इस्लामी है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, एक अल्लाह ही है जिसने दोनों को बनाया हमारे हिसाब किताब के लिए। अब देखें कि इनकी जो प्रिसीजन है जिस कदर, यानी हमें तो घड़ी देखनी पड़ती है ना, सूरज कौन सी घड़ी देख रहा है कि उसको पता हो कि अब 10 बज गए मुझे यहाँ पहुंचना है, अब 12 बज गए मुझे ऊपर पहुंचना है, अब मुझे ढलना है, अब मुझे इतने बजे मुझे इस टाइम पे इस जगह पे पहुंचना होगा और अगले दिन एक मिनट बाद निकलना है या एक मिनट पहले निकलना है। आपने देखा ना फजर के टाइम चेंज होते हैं, एक एक मिनट का फर्क पड़ता जाता है, किसने उसको बताया, हजारों लाखों साल गुजर गए हैं, कभी इन टाइमिंग्स में एक मिनट या सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ा, कभी हमने देखा नहीं कि ये सूरज की रिपेयर हो रही है, वो कहीं आज उसकी छुट्टी है क्योंकि उसके पुर्जे चेंज करने हैं, कहीं चांद के लिए कोई मसला हो गया, कहीं उसको कोई मशीनरी उसकी खराब हो गई है, उसको कुछ रिपेयरिंग की आज जरूरत है, नहीं, लाखों सालों से इसी तरह चल रहा। तो कोई सोचते नहीं कि कोई है जो इसके पीछे चलाने वाला, ये बातें तो एक किसी भी इंसान को समझ में आने वाली। फिर कैसे कोई कहता है कि कोई खुदा नहीं है, कैसे कोई कहता है कि एक से ज्यादा खुदा है, कैसे कोई कहता है कि अल्लाह के साथ किसी और के भी इख्तियार चल रहे हैं, तो कोई किसी और के इख्तियार चल रहे हैं तो क्यों नहीं फिर वो कोई कुछ बदल देता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये है तकदीर अंदाजा, यानी ये है वो प्रिसीजन जिससे अल्लाह ताला ने सब को चलाया, ये अल्लाह का अंदाजा है कि कब किसको किस मिनट किस सेकंड पे कहाँ पे होना है, किसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, किसने किस ऑर्बिट में घूमना है, किसने कब तक कहाँ तक जाना है, ये सब अल्लाह ताला के अंदाजे, उस गालिब के और इल्म वाले के, जिसके पास इल्म ना हो वो कैसे ये जान सकता कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। जाहिर है इल्म होगा तभी वो इतनी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स के अंदर भी जाके इनको बिल्कुल परफेक्ट तरह बनाया, और वो गालिब भी है, अजीज है, कवी है, वो गालिब है, तभी तो कर सकता है। और जो कोई कमजोर हो वो कैसे कर सकता है, जो कोई खुद मगलूब हो वो कैसे कर सकता है। तो जो अजीज है हुक्म उसी का चलता है।